मङ्गलं कुन्द कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे धूमचलमणो वयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मीणमो शुदि केवली भणिदम्। भगवान महावीर स्वामी जो हमारे वर्तमान शासन नायक हैं, आज हम उनका निर्माण महोत्सव अर्थात सादी अनंत काल के लिए, अब वे परमात्मा इस संसार के चक्र में नहीं आएंगे, ऐसी दशा को आज के दिन उन्होंने पावापुरी से प्राप्त किया। और गजब की बात तो ये कि 30-30 वर्षों तक जो उनकी धर्म सभा के दीवान के रूप में, गणधर के रूप में प्रसिद्ध थे, ऐसे गौतम गणधर ने भी आज ही के दिन केवल ज्ञान प्राप्त किया। यानी ये घटना चक्र, क्योंकि गुरुदेव श्री के प्रवचन में सब आ गया, आज अपन इसलिए ज्यादा बात नहीं करके अपने विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इतनी बात कि भगवान का निर्वाण हुआ और गौतम गणधर केवल ज्ञान लेकर के भगवान की पताका को लेकर के चल दिए, है ना। इसी तरह गौतम स्वामी का निर्माण हुआ, सुदर्मा स्वामी उनका निर्माण हुआ, चंबू स्वामी, इस तरह एक परंपरा कि एक ज्ञानी यहां से भव का अभाव करके अपनी मुक्ति पद की यात्रा के लिए अथवा मुक्ति मार्ग में एक भव कम करने के लिए, जो साक्षात मोक्ष चले गए उनकी तो यात्रा पूरी हो गई, और जिनका इस भव में मोक्ष नहीं हुआ तो भी उनका एक भव तो घटी गया। मान अब तो चार, मान पांच भव हैं तो चार रह गए, चार हैं तो तीन रह गए, तीन हैं तो दो रह गए, ऐसी दशा को प्राप्त हुए। वो इस बात को बताता है कि ये जो धर्म पताका ठेठ आचार्यों से, ज्ञानी विद्वानों से, ग्रस्तों से चलते 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 हमारे तारणहार पूज्य गुरुदेव श्री के पास में आई, और गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक लगातार अनवरत रूप से इस दिव्य वाणी का, इस वीतराग वाणी का, इस सिमंदर प्रभु की वाणी का, महावीर प्रभु की वाणी का अपने स्वानुभव शैली में, स्वानुभव युक्त वाणी में उसका रहस्य अपने को उद्घाटित किया। अपन लोग भाग्यशाली हैं कि आज गुरुदेव श्री के 10,000 लगभग घंटों के प्रवचन अपने को उपलब्ध है। इस मामले में भगवान महावीर की दिव्य धुनि से रचे गए शास्त्र तो मौजूद है, आचार्य कुंद कुंद की लेखनी से लिखे गए शास्त्र तो मौजूद है, लेकिन कोई कहे कि कुंद कुंद भगवान की साक्षात वाणी सुनाओ या भगवान की वाणी साक्षात सुनाओ, तो वो व्यवस्था अपने पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन गुरुदेव के युग में एक ऐसा युग अपने को मिला कि आज अपन उस वाणी का साक्षात श्रवण कर रहे हैं, और उस वाणी के द्वारा उस वाणी को ही लिपिबद्ध करके ग्रंथारूढ़ किए गए शास्त्रों का भी अपन लोग अवलोकन कर रहे हैं, है ना। महाभाग्य है कि जो भाग्य से अपने को यह लाभ मिल गया है, तो जब तक अपने को अनुभूति नहीं होवे, अपन मोक्ष मार्ग में प्रयाण नहीं करें, तब तक निरंतर इस मार्ग का, इस वाणी का लाभ अपन लोग लेते रहें, अपने घरों में, अपने जिन मंदिर में, अपने चित्त में, अपने मानस इस पटल पर गुरुदेव श्री की वाणी ये निरंतर गुंजायमान होती रहे। बहुत से लोग जब ये बात बार बार, अपन जब गुरुदेव का नाम ज्यादा लेते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि साहब गुरुदेव का तुम नाम इतना लेते हो तो और भी आचार्य हुए, ज्ञानी हुए, धर्मात्मा हुए, तीर्थंकर हुए, सब हुए, तो क्या इन सबकी गौणता नहीं होती उसमें? ऐसा लोगों को प्रश्न उठता है कि गौणता नहीं होती, खाली गुरुदेव 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 करते हो। मैंने कहा देखो भैया, अपने पिताजी के पिताजी हुए कि नहीं हुए? हुए ना, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ठेठ तक चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो, हुए कि नहीं हुए? हुए। लेकिन जब अपन अपना नाम स्कूल में लिखाते हैं तो सारी परंपरा नहीं लिखाते, अपने पिताजी का नाम लिखाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है ना। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमने अपने पिताजी या अपने पूर्वजों का अपमान किया है। अरे हमारे पिताजी इतने ताकतवर हैं कि वो अपने सारे पूर्वजों को अपने सिर पर लेकर के घूमते हैं और हम अपने पिताजी को सिर पर लेकर के घूमते हैं। हमारे गुरुदेव अनंत तीर्थंकरों की परंपरा को, अनंत आचार्यों की परंपरा को, अनंत ज्ञानियों की परंपरा को अपने मस्तक पर रख करके घूमते थे। एक प्रवचन गुरुदेव का कोई मुझे ऐसा बता दे जिसमें उन्होंने तीर्थंकर परमात्मा को याद नहीं किया हो। आ तो तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी छे, सो सो इंद्रों की सभा में है भगवान एम फरमावता हता। आ तो दिगंबर संतों की वाणी छे, ज्ञानी ग्रस्तों पण केटलो गजब नो काम कर्यू छे। ए सब बात गुरुदेव के प्रवचनों में अपन ने सुनी कि नहीं सुनी? लेकिन जब भाई अपने पिताजी का नाम लिखाया जाएगा तो गुरुदेव का ही नाम आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें किसी ज्ञानी का अपमान नहीं है, लेकिन अनंत ज्ञानियों का सम्मान है। क्यों? क्योंकि एक ज्ञानी के सम्मान में अनंत ज्ञानियों का सम्मान और एक ज्ञानी के अपमान में अनंत ज्ञानियों का अपमान है। तो एक बात तो ये कहनी है कि बहुत गजब का लाभ अपने को मिल रहा है कि जिस लाभ को अपने को किसी भी हालत में वंचित रहने जैसा नहीं है, है ना। और अभी तो मन कितना सहज हो गया है ये सब कि जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। मैं एक प्रसंग आपको बताता हूं। पंडित टोडरमल जी साहब को शठखंडागम पढ़ने का विकल्प आया, कर्नाटक भाषा में थे वो, और पंडित टोडरमल जी कर्नाटक लिपि पढ़ लेते थे, इतने गजब के विद्वान थे। तो उस जमाने में जयपुर से 5 साधर्मियों को दक्षिण देश में भेजा गया, वहां से कर्नाटक के शठखंडागम शास्त्र कर्नाटक लिपि में जो लिखे हुए हैं, संस्कृत भाषा है, प्राकृत भाषा है, लेकिन लिपि कर्नाटक है, वो लाने के लिए भेजे गए। ऐसा बताते हैं तो उस जमाने में 2000 रुपए तो उन्होंने उस जमाने में खर्च किए। किसने? 300 साल। अभी पंडित टोडरमल जी का भी इस साल 300 वर्ष मना रहे हैं अपन लोग जन्म जयंती का, है ना। तो 2000 रुपए तो उस जमाने में खर्च किए। 2 या 3 साल का समय लगा और 1 साधर्मी की रस्ते में मौत हो गई, लेकिन पंडित टोडरमल जी को शठखंडागम पढ़ने को नहीं मिले। और आज आपको बताऊं कितना सुलभ है शठखंडागम। आप अपने मोबाइल में एक वीतराग वाणी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फिर आपको कौन सा शास्त्र चाहिए कि इसकी खोज करने की, आपको ढूंढने की जरूरत, उसमें आपको सारा शास्त्र आपको मिल जाएगा। आप देखो कितना गजब का काम हुआ है, है ना। एक और बात जो मैंने शुरू के दिन कही थी, हमारे भाई निमेश भाई से भी चर्चा हुई और भी हमारे हितू भाई वगैरह सब हम लोग बैठे चर्चा हुई, मैंने एक भावना व्यक्त की थी आपके सामने शुरू के दिन, और वो भावना ये थी कि देखो हमको तो कोई भी अवसर आवे ना, अवसर को लपकना चाहिए। और एक अवसर अपने साथ अपने सामने 2-2.5 साल बाद आने वाला है। कौन सा वर्ष आने वाला है बताओ? हाँ, कि समय सार गुरुदेव श्री को प्राप्त हुआ उसकी शताब्दी वर्ष आने वाला है, और उस शताब्दी वर्ष को हम पूरे देश में इतने जोर शोर से मनाएंगे कि लोगों को, सारी समाज को यह आभास हो कि कांजी स्वामी स्वर्ग में से वापस तो नहीं आ गए, क्या हो रहा है इन मुमुक्षुओं को,
क्या कर दिया, क्या हो रहा है, ऐसा एक अद्भुत इस रूप में कि जैसे गुरुदेव श्री स्वर्ग से पधार गए हों वापस हम लोगों के बीच और वापस हमको समय सार का संदेश अपनी वाणी में सुना रहे हों, अपने को उस समय सार के शताब्दी वर्ष को इतने जीवंत रूप से मनाना है कि हमारे घर घर में, मंदिर मंदिर में, अरे जगह जगह हम लोगों को समय सार और समय सार के प्रतिपादक आचार्य कुंद कुंद देव और समय सार के रहस्योद्घाटक पूज्य गुरुदेव श्री को वापस एक बार जन जन तक अपन लोगों के बीच में ये मार्ग आवे, दोबारा से फोर्स के साथ में ये मार्ग आवे, ये काम अपने को करना है। अभी से हम लोग तो उसकी तैयारी में जुट रहे हैं, आप लोग भी उसकी तैयारी में जुटे और अपन सब लोग मिलकर के अपने उपकारी गुरुदेव श्री का, कि जिनको 100 वर्ष पहले अगर ये समय सार नहीं मिला होता तो क्या होता, कि ये होता कि अभी आप और हम पारला के इस मंदिर में नहीं बैठे होते। ये सच बात है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये आज जो शासन प्रभावना अपने को दिखाई दे रही है, ये उस दिन का दिन है जिस दिन गुरुदेव श्री के हाथ में समय सार आया था। अगर वो नहीं आया होता आज हम ये प्रभावना नहीं देख रहे होते, आज हम सब लोग एकत्रित नहीं होते। आप कोई कहां के, कोई कहां के, मैं कहां का, आप कहां के, आपकी हमारी कोई लौकिक रिश्तेदारी तो नहीं है ना, नहीं है ना, कोई रिश्तेदारी नहीं। लेकिन रिश्तेदारों से ज्यादा प्रेम अपन लोगों में मिलता है ना। अपन अपने रिश्तेदार के यहां सोचें, घर पर किसी के यहां जाने के लिए अपन सोचें एक बार, और अपना मुमुक्षु हो तो उसके घर में अपन इस अधिकार से घुस जाते हैं कि ये जैसा हमारे घर है। ये वात्सल्य ये किसके प्रताप से अपने को मिला है। आज हम प्रांतवाद का भेद भूल गए, आज हम भाषावाद का भेद भूल गए, आज हम जातिवाद का भेद भूल गए कि ये कौन सा वाल है, ये कौन सा वाल है, सब भूल गए अपन। एक ही हमारी समाज, और उस समाज का नाम हुआ मुमुक्षु समाज। बोलो कितना गजब, गुरुदेव श्री ने आत्मा के भेदों का ही निषेध नहीं किया, अभेद आत्मा की ही दृष्टि नहीं कराई, लेकिन उन्होंने प्रांत भेद, जाति भेद, है ना, ये सब भाषा भेद, सारे भेदों को भुला करके हमें एक अभेद मुमुक्षुता की, मुमुक्षु समाज के रूप में एक ऐसा अभेद और अखंड समाज अपने को गुरुदेव श्री देकर के गए हैं। गुरुदेव श्री की ये विरासत अपने जीवन काल में अपने को संभाल के रखना है, और अपने जीवन काल पूरा हो उसके पहले पहले अपनी अगली पीढ़ी तक यह विरासत सौंपना है। क्यों? क्योंकि भगवान महावीर के बाद लगभग अब तक जितनी पीढ़ियां हुई, 20 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है तो 100 साल में 5 पीढ़ी, अब गणित लगा लेना, मुझे ज्यादा वो नहीं है, है ना। तो उतनी पीढ़ियों में से एक भी पीढ़ी ने भाई साहब ये गलती नहीं की। कौन सी गलती नहीं की? ये तत्व ज्ञान की विरासत अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचाने की गलती। अगर एक एक पीढ़ी अगर ये ब्रेक कर देती इस बात के लिए, तो आज ये तत्व ज्ञान आप और हम तक अक्षुण्य रूप से नहीं पहुंचता। तो जब हमारी इतनी पीढ़ियों ने, हमारे इतने पूर्वजों ने गलती नहीं की, तो हम भी इस गलती को ना करें, और जैसे भी बने अपने को तो बहाना चाहिए जिन शासन की और गुरुदेव श्री की प्रभावना का। बस कोई बहाना मिले और प्रभावना में जुट जाओ, आत्मा की आराधना और जिन शासन की प्रभावना, बस ये दो काम अपने जीवन में होना चाहिए। बस ये इसलिए मैंने ये दो बातें आपके सामने रखी है। अभी आप अपन सब लोग इसका पूरा पूरा लाभ लेंगे, और अभी अपन ये एक बात और मेरे को विकल्प आया कि 2.5 साल गुरुदेव के शताब्दी वर्ष में समय सार में बाकी है ना, तो कम से कम अपन एक प्रतिज्ञा आज दिवाली के दिन से करें कि गुरुदेव श्री के प्रवचन शताब्दी वर्ष जब समय सार का आएगा, उसके पहले पहले गुरुदेव श्री के समय सार के कम से कम एक बार के प्रवचन, ज्यादा सुनो तो आपकी कैपेसिटी है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार के प्रवचन, पहले कलश से शुरू करके 278 कलश तक के प्रवचन, चाहे 15वीं बार के, चाहे 18वीं बार के, चाहे 19वीं बार, जिस बार के आपको सुनना हो सुने, ताकि अपने को लगे कि अरे ऐसा समय सार में क्या था कि गुरुदेव श्री इस पर ऐसे रिझे, है ना। ये ऐसा आता है ना, 19 बार सभा में प्रवचन किए, और 45 साल का जीवन दिगंबर संप्रदाय में गुरुदेव श्री का जीवन 45 साल रहे, 45 साल 91 साल की उम्र। अब 45 साल में 19 बार तो अकेले समय सार पर प्रवचन किए। अब कोई प्रवचन 2 साल, कोई प्रवचन 2.5 साल, कोई प्रवचन 3 साल, जो भी चला हो 2-2.5 साल जो भी चला है ना, इतना तो एक एक बार का। अब आप सोचो और कितने कितने ग्रंथों पर गुरुदेव ने प्रवचन किए। तो जब गुरुदेव ने 45 साल में 19 बार प्रवचन किए तो 2.5 साल में एक बार सुनना तो हमारा भी बनता है ना। तो आज अपन दीपावली के दिन है जिसको बोलते हैं, आप बोलते हैं ना कि प्रभावना लेकर के जाना है ना, तो आज अपन गुरुदेव के द्वारा दी गई ये प्रभावना लेकर के घर पे जाएं। हम एक बार शताब्दी वर्ष के पहले हमारा एक बार का गुरुदेव श्री का प्रवचन पूरा होगा और होगा, ये संकल्प लेकर के अपन यहां से जाएं। तो समझे अपन कि अपन ने वास्तव में दिवाली मनाई, अपन ने वास्तव में गुरुदेव श्री के समय सार के शताब्दी वर्ष को मनाने का संकल्प यहां पर किया, ये तब माना जाएगा। क्योंकि जब हम खाली शताब्दी वर्ष मना ले, हम ही समय सार नहीं सुने, तो ऐसी कैसे बात होती है भाई साहब। अपन तो हमारे यहां तो कहते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं ना रसोई बनाने वाले, कि वो जनता को जिमाने की बात बाद में करते, पहले खुद जिमते हैं। और वो जिमते कैसा है पता है, कि वो जो हमारे यहां राजस्थान में जो लड्डू बाटी बनाते हैं ना, तो पब्लिक के लिए अगर एक किलो वो घी वाला, 1 किलो आटे में 1 किलो घी वाला अगर लड्डू बनाएंगे वो, तो खुद के लिए कैसा बनाते हैं पता है, 1 किलो में 4 किलो घी। हाँ ये समझे ना। तो अपने को जरूर अपना लाभ लेना है बस। देखो ये सब तो एक प्रसंग आते हैं तो अपन ये सब काम करते हैं, लेकिन सच में इसमें अपना लाभ छुपा है और अपने को अपने लाभ के हिसाब से काम करना है कि इसमें मेरा भला है, ये बात अपन करते हैं। अभी अपनी जो चर्चा चल रही थी कौन सी गाथा पे चल रही थी, 181, 82 और 83 गाथा पर अपनी चर्चा चल रही थी। बहुत मार्मिक गाथा, बहुत गजब की गाथा, उसमें यहां पर आचार्य भगवान ने क्या बात कही थी, यहां तक अपनी चर्चा हो गई थी। देखो यहां पर लास्ट में अपनी चर्चा चल रही थी, बहुत गजब की चर्चा है, बहुत अद्भुत गाथा है। देखो क्या कहते हैं यहां पे, यहां पर ये चर्चा आ गई थी, और क्रोधादिक में ये आ गई थी ना, तात्पर्य यह है कि ज्ञान ज्ञान में ही है, है ना, इसी प्रकार क्रोध क्रोध में ही है, यहां तक बात हुई थी। और क्रोधादिक में, कर्म में या नो कर्म में, ये क्रोधादिक में, कर्म में या नो कर्म में, तीनों आ गए। क्रोधादिक में मैंने विकारी, कर्म में द्रव्य कर्म, नो कर्म में ज्ञान नहीं है, आ गया। और ज्ञान में क्रोधादिक, कर्म या नो कर्म नहीं है, क्यों नहीं है, तो उसका हेतु दिया, क्योंकि उनके परस्पर अत्यंत स्वरूप विपरीतता होने से। क्या होने से, कि परस्पर माने, परस्पर माने ये क्रोधादि कर्म और नो कर्म का स्वरूप ज्ञान से विपरीत है और ज्ञान का स्वरूप इनसे विरुद्ध है, विपरीत है, आपस में एक दूसरे का स्वरूप एक दूसरे में नहीं मिलता। अर्थात ज्ञान का स्वरूप और क्रोधादि का तथा कर्म नो कर्म का स्वरूप अत्यंत विरुद्ध होने से, हो गया अत्यंत विरुद्ध होने से, उनके परमार्थ भूत आधार आदेश संबंध नहीं है। परमार्थ भूत मतलब वास्तविक आधार आदेश संबंध नहीं, अगर कहीं आधार आदेश संबंध की बात कही गई हो तो उसे कही जाने वाली बात समझना। जैसे आपके घर में मेहमान आवे और आप ये बोलो कि भाई साहब आप संकोच नहीं करना, ये आप ही का घर है, तो ये कथन परमार्थिक है कि व्यवहारिक है, व्यवहारिक है। अरे वो सच में संकोच नहीं करे, और जब घर अपना है तो घर की हर चीज अपनी तो तिजोरी खोलने लगे, तो आप नंबर 100 डायल करोगे उसी समय, नहीं करोगे, क्यों भाई साहब, क्या आपने ही तो कहा था। अब कहते नहीं, कहते भाई साहब आप ही की दुकान है, जरूर पधारा करो, आपको जो चाहिए ले जाया करो। अब तो ठीक है, हमने सोचा कि अपनी दुकान है तो फिर क्या है, हाँ तो खूब माल भरवाया, कहा ये भी पैक कर दे, ये भी पैक कर दे, ये पैक कर दे, पैक करके भाई साहब चलने लगे। हमने कहा भाई साहब झाका रहे हो, जरा बिल तो देते जाओ, कि क्या बात करते हो, अपनी दुकान में कोई बिल देता है कि भाई साहब अगर सामने वाले ने सज्जनता के नाते ये कहा, आपका मान आपका सम्मान रखने के लिए अगर ये कहा कि आप ही का घर है संकोच नहीं करना, तो इसका मतलब यह है कि अपनी मर्यादा को मत भूलना। यह है उसका मतलब, संकोच नहीं करना मतलब बेशरम हो जाना, ये मतलब है उसका। तो इसी तरह यहां पर कह रहे हैं कि वो कोई पारमार्थिक संबंध नहीं है उनमें, पारमार्थिक आधार आदेश संबंध नहीं है। इसका मतलब क्या कि कहीं अगर आधार आदेश संबंध की बात कहीं भी गई हो जिनवाणी में, तो समझ लेना वो केवल कहने मात्र के लिए है। आया कभी कभी जिनवाणी में राग का, राग के साथ में आत्मा की अवेद की चर्चा आएगी, ये सब कभी कभी मनुष्य शरीर तो मनुष्य जीव भी कहा हुआ जिनवाणी में मिलेगा, आया ना अभी सटकाय जीवों की हिंसा का, ये सब आया कि नहीं है? तो सटकाय, तो आप कह रहे हो कि काय जीव नहीं है और फिर कह रहे हो सटकाय जीव, है ना? आया था ना आज गुरुदेव वस्तु विज्ञान सार की बात कर रहे थे, पढ़ने जैसी पुस्तक है, पेट्रोल से गाड़ी उसी पुस्तक में नहीं चलती थी सबसे पहले जो गुरुदेव बोल रहे थे ना पेट्रोल से गाड़ी वाली बात, वो उसी पुस्तक में आई थी। और कितनी करुणा थी, मुझे तो वास्तव में विचार आता है वो पुस्तक कब बनी थी पता है आपको, कब के प्रवचन है वो? जब सर सेठ हुकमचंद जी पहली बार इंदौर वाले सर सेठ हुकमचंद जी सोनगढ़ आए और वो अपने साथ एक विद्वानों की टीम लेकर के आए थे, आत्मधर्म गुजराती का पढ़ा था, हिंदी नहीं निकला था उस समय। और उन विद्वानों, जब वो विद्वान आए तो गुरुदेव श्री के अंदर में एक करुणा का भाव उपस्थित हुआ कि यदि इन विद्वानों के ये तत्व ज्ञान समझ में आ गया तो इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार ज्यादा होगा और ज्यादा लोगों तक और ये बात पहुंचेगी। इस करुणामय भावना से गुरुदेव ने जो प्रवचन वहां उस समय किए उन प्रवचनों के संकलन का नाम है वस्तु विज्ञान सार, जो पहली बार सोनगढ़ से 10,000 प्रतियों में छपी थी और हिंदी और गुजराती, जब बाद में हिंदी आत्मनर्म निकलने लगा था पहले गुजराती आत्मनर्म निकला था, सभी ग्राहकों को निशुल्क भेंट स्वरूप दी गई थी। ये वो पुस्तक है, पढ़ना इसको भी, बहुत जोरदार है। तो अगर ये कहा कि कहीं कहा भी गया हो ना, तो कहते वो कहने मात्र की बात है। जैसा मैंने उदाहरण दिया था ना, सभी लोग हमारे अक्षय भाई वगैरह तो याद करते उस उदाहरण को, क्या अपना ये जयेश भाई बहुत याद करते थे उदाहरण को, घर पे बैठे थे ना, तो आपने उदाहरण दिया था, मैंने कहा कौन सा उदाहरण दिया था, वो कहते नकली सोने की असली दुकान वाला, है ना? तो वो नकली सोने की असली दुकान है, मतलब वो झूठा व्यवहार नहीं से कहने को है, असद्भूत व्यवहार नहीं से कहने की बात है, सच्चाई उस बात में कुछ नहीं है, परमार्थभूत आधार आदेश संबंध नहीं है। आ गया, तो देखो अब क्या कह रहे हैं इसके बाद जोरदार बात, तो और जैसे ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है। ज्ञान का स्वरूप क्या है? जानन क्रिया, कल चर्चा हो गई थी ना काफी इसकी कि ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, उसी प्रकार ज्ञान का स्वरूप क्रोधादि क्रिया भी हो, ऐसा नहीं है, है ना? क्यों? 71 नंबर की गाथा में बात आई कि जैसे ज्ञान होते समय ज्ञान का होना मालूम पड़ता है, उसी प्रकार क्रोधादि का होना मालूम नहीं पड़ता, और क्रोधादि के होने के समय ज्ञान का होना मालूम नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ज्ञान और क्रोध एक वस्तु नहीं है। बहुत सारे बहुत न्याय पहले आचार्य भगवान ने दिए, तो उन्होंने कहा कि भाई उसी प्रकार ज्ञान का स्वरूप क्रोधादि क्रिया भी हो, अथवा जैसे क्रोधादि का स्वरूप क्रोधादि क्रिया है, उसी प्रकार क्रोधादि का स्वरूप जानन क्रिया भी हो, ऐसा किसी भी प्रकार से स्थापित नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रकार से, निश्चय से या व्यवहार से, किसी भी प्रकार से यह बात स्थापित नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या कि ज्ञान क्रिया, ज्ञान मैंने ज्ञान का ज्ञान के साथ ज्ञान क्रिया का अभिन्नत्व और क्रोध आदि का क्रोध आदि क्रिया के साथ अभिन्नत्व, है ना? ज्ञान का क्रोध आदि के साथ नहीं और क्रोध आदि का ज्ञान के साथ में नहीं, ऐसी एक व्यवस्था है कि स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जानन क्रिया और क्रोध आदि क्रिया भिन्न भिन्न स्वभाव से प्रकाशित होते हैं। अब इससे ज्यादा क्या बोलेंगे, बोलो। जानन क्रिया और क्रोध आदि क्रिया, क्या शब्द का प्रयोग किया? जानन क्रिया और क्रोध आदि क्रिया, ये क्रिया भिन्न है ना, जानन क्रिया वो क्रोध आदि क्रिया नहीं है और क्रोध आदि क्रिया वो जानन क्रिया नहीं है, दोनों क्रियाएं भिन्न हैं। तो कहते हैं कि इन दोनों का स्वभाव भी भिन्न है। जानन क्रिया का स्वभाव है ज्ञान और क्रोध आदि क्रिया का स्वभाव है क्रोध। जानन क्रिया में क्रोध आदि क्रिया नहीं और क्रोध आदि क्रिया में जानन क्रिया नहीं, इसी प्रकार जानन क्रिया क्रोध में नहीं और क्रोध जानन क्रिया में नहीं, ये सब ओर से इनके अंदर भिन्नता है। इनकी चर्चा अपनी हुई थी ना, वो सब चर्चा कि भिन्नता है तो भिन्न भिन्न स्वभाव से प्रकाशित होती है अर्थात प्रसिद्ध होती है, अलग अलग इनका अलग अलग स्वभाव से ये जानने में आती है। क्रोध आदि क्रिया क्रोध से जानने में आती है और जानन क्रिया वो ज्ञान स्वभाव से जानने में आती है। एक का दूसरे में अत्यंत अभाव है और इस भांति स्वभावों के भिन्न होने से, क्यों? क्योंकि वस्तु होती है वो अपने स्वभाव मात्र होती है। इस वस्तु की परिभाषा क्या दी? समय सारी 71 नंबर की गाथा में वस्तु की परिभाषा क्या दी? कि वस्तु है वह अपने स्वभाव मात्र है। तो ये यहां पर उसी बात को यहां पे लिया कि क्योंकि इस भांति स्वभावों के भिन्न होने से वस्तुएं भिन्न ही हैं। क्यों भिन्न है? क्योंकि स्वभाव भिन्न है, स्वभाव न्यारा है। हाँ? देखो, खारेपन के स्वभाव से, खारेपन माने खारेपन रूप से नमक प्रसिद्ध होता है और मीठेपन रूप से चीनी प्रसिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव भिन्न है तो वस्तुएं भिन्न है, है ना। चीनी का स्वभाव नमक में नहीं मिलेगा और नमक का स्वभाव चीनी में नहीं मिलेगा, और यदि ऐसी भिन्नता नहीं होवे तो ये नमक है और ये चीनी है, आप कैसे कहोगे? सीधा सा न्याय है, कोई ज्यादा मतलब बहुत सूक्ष्म बात है और हमारी समझ में नहीं आएगी, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत सरल बात है, है ना। क्षण में केवल ज्ञान ले, ऐसे भगवान आत्मा की बात भगवान आत्मा को समझ में नहीं आवे, ये कहां हो सकता है। वो यहां पे कह रहे हैं कि स्वभावों के भिन्न होने से वस्तुएं भिन्न ही हैं। इस प्रकार ज्ञान तथा अज्ञान में, अब क्रोध आदि को क्या कहा? ज्ञान का विरोधी। तो ज्ञान का विरुद्ध कौन हुआ? अज्ञान। अज्ञान माने क्रोध, अज्ञान कहो, क्रोध कहो, जड़ कहो, जो कहना है कहो। तो उसमें क्रोध आदि में आधार आधेयत्व नहीं है, ये बात कही। अब देखो इसी बात को बहुत, एक दृष्टांत तो बहुत सरल है, बहुत गजब का दृष्टांत, सरल भी है और बहुत बढ़िया भी है और अपन लोगों की बुद्धि में आ सके ऐसा दृष्टांत है। भैया समझो जरा, देखो इसी को विशेष समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? कहो एक ही आकाश को अपनी बुद्धि में स्थापित करके, एक अपनी बुद्धि में आकाश को स्थापित करो। आकाश माने क्या? एक अखंड द्रव्य, ठीक है, एक अखंड द्रव्य, एक निर्लेप द्रव्य, ऐसा जो द्रव्य है उस आकाश को स्थापित करके, अब आकाश के आधार आधेय भावत्व का अभाव का विचार किया जाए कि इस आधार आकाश का आधार कौन और आकाश किसका आधेय है? कोई आकाश का आधार? अरे आकाश में तो सब रहते हैं, लेकिन बताओ आकाश किस में रहता है, ये बताओ जरा, बताओ। वो कहते हैं कि आकाश में आधार आधेयत्व भाव का विचार किया जाता है तब आकाश को शेष अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध होने से, अर्थात अन्य द्रव्यों में स्थापित करना अशक्य होने से, आप ये कह सकते हो कि आकाश कहां रहता है? कि आकाश जीव में रहता है। अरे आकाश में जीव रहता है ये तो व्यवहार से कदाचित कह भी सकते हो, व्यवहार से, हो वो भी कैसा व्यवहार से, आकाश में पांच द्रव्य रहते हैं ये व्यवहार कथन है। सच में हर द्रव्य अपने अपने प्रदेशों में रहता है, आकाश में रहता है ये व्यवहार कथन है, लेकिन फिर भी व्यवहार निश्चय से तो ये बात है ही नहीं, लेकिन व्यवहार से भी कहना हो तो इतना कह सकते हैं कि आकाश में पांच द्रव्य रहते हैं, लेकिन आकाश किस में रहता है ये बताओ। तो आकाश का दूसरे द्रव्य में आप आरोपण कर सकते हो हैं? कि आकाश आकाश जीव में रहता है, आकाश पुद्गल में रहता है, आकाश धर्म द्रव्य में रहता है, आकाश अधर्म द्रव्य में रहता है, कह सकते हो अन्य द्रव्य की बात? कि नहीं, आरोपित नहीं कर सकते। आया ये कह रहे हैं यहां पे कि उसे अन्य द्रव्यों में स्थापित करना अशक्य दुर्लभ नहीं का। एक होता है दुर्लभ और एक होता है अशक्य। अशक्य माने ये संभव ही नहीं है। सूर्य का पूर्व से उदय होना वो तो सच्चा है, सूर्य का पश्चिम से उदय होना दुर्लभ है कि अशक्य है? अशक्य, अशक्य है ना। हां, बरसात के दिनों में बादलों के कारण से सूर्य के दर्शन होना दुर्लभ है, ये हम कह सकते हैं। और वो भी वही बंबई की इस साल की बारिश, समझ में आया कि नहीं आया? मुश्किल से सूर्य दिखा होगा बरसात में, है ना ऐसा। तो हम ये तो कह सकते हैं कि भाई साहब अभी तो बरसात का मौसम है, कि भैया कब तक दिखेगा ये सूर्य? तो भाई साहब कह नहीं सकते, अभी बरसात का मौसम है, पांच दिन से तो हमने नहीं देखा, अभी आप कितने दिन नहीं देखोगे, कह नहीं सकते। दुर्लभ है, अशक्य तो नहीं है ना। बादल छटे तो अभी दिखे, दुर्लभ है। लेकिन एक बात बताओ कि सूर्य का पश्चिम से उदय होना दुर्लभ है कि अशक्य है? आ गया ऐसा। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि वो स्थापित करना अशक्य होने से बुद्धि में अर्थात ज्ञान में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभावित नहीं होती। प्रभावित नहीं होती का मतलब होता है लागू नहीं होती, नहीं लग सकती, मतलब दूसरा कोई आधार आदे है, आकाश का कोई दूसरा आधार है, ऐसी बुद्धि में ऐसी बात नहीं लगती। तो यह आ गया प्रभावित नहीं होती, और उनके प्रभावित न होने से अर्थात आकाश का कोई दूसरा आधार है और आकाश उसका आधेय है, ऐसी बात नहीं होने से एक आकाश ही, ध्यान देना क्या शब्द का प्रयोग किया, एक आकाश ही, एक आकाश में ही प्रतिष्ठित है। इसका मतलब क्या हुआ कि आकाश का भिन्न कोई आधार आधे नहीं है, एक आकाश ही और एक आकाश में ही प्रतिष्ठित है। कितना सरल दृष्टांत है, बहुत कोई ज्यादा कठिन नहीं है दृष्टांत, यह उसमें प्रतिष्ठित है और यह भली भांति समझ लिया जाता है, इसमें किसी को शंका नहीं होती। वो आता है ना अन्य मत में आता है ना कि सावी पृथ्वी काय पे टिकी, तो वो कहते शेष नाक पर। तो फिर प्रश्न करेंगे कि शेष नाक किस पे टिका, है ना? आता है ना, मतलब अगर आप भिन्न आकाश किस पे, उस पे, तो वो किस पे, वो उस पे, वो किस पे, वो उस पे, इतरे इतराश्रय दोष, वो उसके आश्रित, वो उसके आश्रित, वो उसके आश्रित, वो उसके आश्रित, ऐसा चलता ही जाएगा। आता है कि ईश्वर कर्तावाद की चर्चा आती है, तो लोग कहते हैं कि साहब जगत को किसने बनाया, कि भगवान ने। अच्छा बोलो भगवान को किसने बनाया, कि एक बड़े भगवान ने। कि फिर उस भगवान को किसने बनाया, कि उससे बड़े भगवान ने। अंत तो गत्वा ये कहना पड़ेगा कि सबसे बड़े भगवान ने, कि उस सबसे बड़े भगवान को किसने बनाया, तो कहते जी वो अनादि अनंत है। तो मैंने कहा क्यों, दादागिरी उसी की चलेगी क्या विश्व में? वो अनादि अनंत है, और ये वो अनादि, मतलब कोई पदार्थ विश्व में अनादि अनंत हो सकता है ना, तो जब कोई हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता? बात पूरी हो गई वहीं पर, वहां ईश्वर कर्तृत्व का खंडन हो जाता है। इसी तरह यहां पर बात है कि जब एक, जब भिन्न आधार आधेय की बात ही खड़ी नहीं होती है, तो एक आकाश का, एक आकाश में ही, आकाश में ही वो प्रतिष्ठित है, ये भली भांति समझ लिया जाता है। और इसलिए ऐसा समझ लेने वाले को पर आधार आधेयत्व तो भासित नहीं होता। ये दिया दृष्टांत। अब सिद्धांत सुनो। इस प्रकार जब एक ही ज्ञान को अपनी बुद्धि में स्थापित करके ज्ञान के आधार आधेय भाव का विचार किया जाए, तब ज्ञान को शेष अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध ही होने से बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभावित नहीं होती। कि कोई ज्ञान का आत्मा का कोई भिन्न आधार आदि है ऐसी कल्पना भी खड़ी नहीं होती, संभव ही नहीं है। वो जो चीज संभव ही नहीं है तो नहीं होती, और उसके प्रभावित नहीं होने से एक ज्ञान ही एक ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है। अब ज्ञान क्रिया और ज्ञान आत्मा इतना भेद भी निकाल दो। क्यों? क्योंकि ज्ञान क्रिया से पूछो तुम कौन हो तो ज्ञान क्रिया बोलेगी मैं ज्ञान हूं। ज्ञान क्रिया, क्रिया कभी भी अपना परिचय क्रिया के रूप में नहीं देती, तब वो ज्ञान की क्रिया कहलाती है। दूसरी भाषा में कहे ना कि सम्य दर्शन, अभी समझो अपने सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र सभी आ गए उसमें, तो इनमें से किसी से भी तुम पूछो तो बोलो तुम कौन हो, तो उनका एक स्वर होता है। वो कभी भी है क्रिया रूप, लेकिन क्रिया रूप होने पर भी कभी किसी का वो किसी को अपना परिचय क्रिया के रूप में नहीं देती। वो कहती कि मैं तो ज्ञान हूं अर्थात आत्मा हूं। किसने कल प्रश्न उठाया था, शायद पंकज भाई थे हम लोग, तो किसने प्रश्न किया था मेरे से, तो कि ये तो फिर झूठी बात हुई, को पर्याय अपनी पर्याय ये बोले कि मैं द्रव्य स्वभाव हूं तो ये बात तो झूठी हो गई, वो तो पर्याय है। और वो ये बोले कि मैं ध्रुव हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मैं नित्य हूं, मैं एक रूप हूं, तो पर्याय तो अनेक रूप है, पर्याय तो क्षणिक है, पर्याय तो पर्याय है द्रव्य नहीं, कि वो ये बोले तो ये तो झूठ हुआ। इनका बात ऐसी है भैया, एक उदाहरण दिया था मैंने उनको, एक उदाहरण दिया मैंने कहा आपसे कोई पूछे भाई भाई साहब आपका नाम क्या है, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, तो मैंने कहा आपका पूरा शरीर उत्तर देता है ना। कि एक जीभ बोलती है, उदाहरण के लिए जीभ से, जीभ माने बोलती तो भाषा वर्गना है, अभी अपने को उदाहरण लेना है खाली, उतना समझना, सिद्धांत मत लगाना है इसमें अभी। उदाहरण क्या बोलेगा जीभ, उत्तर देगी ना, क्या उत्तर देगी जीभ, जीभ क्या उत्तर देगी कि मैं अमुक चंद हूं, मेरा नाम यह है, मैं वहां का रहने वाला हूं, तो ये झूठ हुआ ना, क्योंकि जीभ को तो ये बोलना चाहिए भाई साहब मैं तो जीभ हूं। अरे जीभ का मतलब यह है कि पूरे शरीर में बोलने वाला अंग वो है, तो उस बोलने वाले अंग का यह दायित्व है कि नहीं बोलने वाले पूरे शरीर का परिचय दे। इसी तरह द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जो वस्तु है, अभी ध्यान से सुनना, कि इसमें जो द्रव्य स्वभाव है वो तो निष्क्रिय एक रूप है और पर्याय वो सक्रिय है। सक्रिय पर्याय का कर्तव्य क्या, सक्रिय पर्याय का कर्तव्य ये कि वो निष्क्रिय ध्रुव तत्व का परिचय दे। क्यों? क्योंकि वो पर्याय उस वस्तु का अंश है ना, उसका अवयव है ना, तो उस अवयव का कार्य क्या हुआ, कि अवयव का कार्य हुआ कि नहीं बोलने वाले अपना परिचय, अपने अपना परिचय खुद नहीं देता द्रव्य स्वभाव, वो पर्याय उसका परिचय देती है। पर्याय होती ही इसलिए है, क्यों नहीं, तो पर्याय को परमे तो कुछ करना नहीं है, पर्याय परमे कुछ करती है, अपना अपना विकल्प अपना अपनी पर्याय परमे कुछ नहीं करती, और द्रव्य में क्या करना उसको, कि द्रव्य तो पूरा पूरा है, जब द्रव्य पूरा तो द्रव्य में कुछ करना नहीं और परमे कुछ कर सकती नहीं, तो इस पर्याय की जरूरत क्या है, नक्की करो पहले। कि पर्याय होती ही इसलिए है कि वो ध्रुव को प्रसिद्ध करने वाली होती है, और अगर वो पर्याय ध्रुव को प्रसिद्ध करने के बजाय अपने को प्रसिद्ध करने लगे उसको बोलते हैं क्रोधादि क्रिया, और वो पर्याय जब ध्रुव स्वभाव को प्रसिद्ध करने लगे प्रसिद्ध करे तो उसी को बोलते हैं ज्ञान क्रिया। बात इतनी सी है, तो वो झूठ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको वो कार्य सौंपा गया और पूरे अधिकार के साथ सौंपा गया कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारी अस्थि क्यों है, कि तुम्हारी अस्थि ही इसलिए है कि तुम अपनी अस्थि को याद नहीं करो और त्रिकाली अस्थि में अपनी अस्थि को समाहित करके ये मैं हूं ऐसा बोलो। बात समझ में आती है ना। वो यहां पे कह रहे हैं, देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, कि यहां पे कहते हैं कि भली भांति क्या कह रहे हैं, देखो कि अपेक्षा प्रभावित नहीं होती और उसके प्रभावित नहीं होने से एक एक ज्ञान ही एक ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है, यह भली भांति समझ लिया जाता है। और जब यह भली भांति समझ लिया जाता है तो फिर क्या होता है, और इसलिए ऐसा समझ लेने वाले को पर आधार आधेयत्व भाषित नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि होवे तो भाषित होवे ना, है ना, तो भाषित नहीं होता। मैंने ऐसा नहीं है कि साहब है तो सही, लेकिन क्या होता है, जैसे कि साहब है तो सही लेकिन, जैसे होता है ना कि किसी आदमी को दर्द हो लेकिन भाषित नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आधार आधे तो हो और हमें बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया हो तो भाषित नहीं होता हो, कि ऐसा नहीं है। ये है नहीं और तुम्हें भाषित होता था, इसका नाम बेहोशी का इंजेक्शन था। अरे अभी तो तुम जागृत हुए हो, आचार्य कहते हैं जागृत हुए हो ना, तो जैसा है वैसा भाषित होता है। क्या मतलब था, कि देखो सब कोई आदमी सपना देखता है तो सपने में क्या देखता है, वो जैसा नहीं होता वैसा देखता है, नहीं होता। गरीब आदमी भी सपने में अपने को अरबपति देख सकता है और अरबपति भी सपने में अपने को दरिद्री देख सकता है। तो ये जो देखना है, सपने का देखना है, इसमें सच्चाई है कि जागृत अवस्था का देखना इसमें सच्चाई है। उदाहरण आ गया, तो मोह नींद में हम क्या देख रहे थे, कि भिन्न आधार आधे ही देख रहे थे। अब हमारी मोह की नींद खुली तो अब हमें भिन्न आधार आधे की भावना हमारे चित्त में प्रभावित नहीं होती, उद्भवित नहीं होती। अर्थात जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा हमारे ज्ञान में, वैसा हमारे श्रद्धान में, वैसा हमारी लीनता में हमें आया, ऐसा यहां पे कहते नहीं होता। इसलिए ज्ञान ही ज्ञान में ही ज्ञान ही आत्मा ही ज्ञान में ही वर्तमान माने जो परिणति है ना उसमें ही क्या है वो, और क्रोधादिक ही क्रोधादिक में ही है। मतलब क्या, ज्ञान ज्ञान में है। अभी ज्ञान ज्ञान क्रिया ये भेद भी निकाल दिया, क्रोध क्रोधादि क्रिया है ना, कि एक क्रिया और वस्तु का भेद भी निकाल दिया और उसको उसी में स्थापित कर दिया। इस तरह ये एक बात आचार्य भगवान ने इसमें कही। अभी आगे देखो, इसमें और दो मिनट में पूरा कर देते हैं, हो गया। इस प्रकार ज्ञान का और क्रोध आदि का तथा कर्म नो कर्म का भेद विज्ञान भली भांति सिद्ध हुआ है ना। और उसके बाद का एक कलश लिया है, वो कलश आपके सामने पढ़ता हूं। उसमें आचार्य भगवान ने अपने को क्या बात कही, देखो क्या कहते हैं यहां पे, कि एक कलश में आचार्य भगवान कहते, खाली कलश पढ़ता हूं अभी, कि चिद्रूपता को धारण करने वाला ज्ञान और जड़ रूपता को धारण करने वाला राग, कर्म नहीं लिया, जड़ रूपता को धारण करने वाला राग है ना। और 72 नंबर की गाथा में कहा आचार्य भगवान ने, आश्रव जड़ स्वभावी है, अपने को नहीं जानते और पर को नहीं जानते, पर के द्वारा यानी आत्मा के द्वारा जाने जाते हैं इसलिए वे जड़ स्वभावी हैं। तो इसलिए कहा कि जड़ रूपता को धारण करने वाला राग दोनों को अंतरंग में, फिर क्या कहा, दारुण दारेण मैंने दारुण विदारण के द्वारा, मैंने भेद करने वाला उग्र अभ्यास के द्वारा, मैंने दया मत दिखाना भेद करने में, है ना, वो मां की तरह मत करना, ये निकाल तो रहे हो बेटा अपना है, निकाल तो रहे हो बेटा अपना है। अपना नहीं होता तो निकालते ही कैसे, और जब निकाल रहे हैं तो अपना अपना भूल के ही निकालना पड़ेगा, अपना अपना रख करके निकाल नहीं सकते। और निकाल रहे हैं ना तो ये बात तो उसमें गर्वित होगी ना, कि अपना भाई आप निषेध भी कर रहे हैं, है तभी तो निषेध। अगर अपना पड़ोसी के बेटे के लिए थोड़ी अपन विज्ञापन निकलाते हैं कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं, इससे कोई लेन देन करेगा तो मेरा उससे कोई मतलब नहीं, ये कौन करता है ना। वो सब बातें तो है, लेकिन क्या करेंगे, क्या करेंगे यहां पे, कि भेद करने वाला उग्र अभ्यास है ना, उसके द्वारा फिर क्या करें,
तो आचार्य भगवान ने कहा सभी ओर से विभाग करके, जो गुरुदेव ने कहा था ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, सर्वथा सभी ओर से मैंने सर्वथा उसका विभाग करके संपूर्णतया दोनों को अलग करके। अब संपूर्णतया कह रहे हैं तो फिर कौन सा बाकी बचा, क्या बाकी बचा? अलग करके फिर क्या करते हैं, क्या देखो, यह निर्मल भेद ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है। क्या मतलब? भेद का ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है, भेद उदय को प्राप्त नहीं हुआ। भेद तो पहले से ही था, तुझे भेद का ज्ञान नहीं था, तो भेद ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है। इसलिए अब क्या करते हैं कि देखो, एक शुद्ध विज्ञान घन के पुंज में स्थित और अन्य से अर्थात राग से रहित हे सत्पुरुषों मुदित हो। आचार्य कहते प्रसन्न हो जाओ कि तुम्हें लगा था कि हमारा सब कुछ लूट गया, हमारा सब कुछ मिट गया, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, और जब तुमने ये देखा कि हां बम तो गिरा था लेकिन जहां बम गिरा था वहां से हमारी संपत्ति थोड़ी सी दूर थी, बम गिरा वहां पड़ा, माना गिरा पड़ा, उससे जो घटनाक्रम जहां तक उसकी मार पड़ी उससे थोड़ी सी दूर हमारी संपत्ति थी और वो पूरी की पूरी बच गई, तो क्या होता है फिर अपने को प्रसन्नता होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? ऐसा तो नहीं होता ना, अरे बम गिरा और मेरी बच गई, ऐसा भाव आता है क्या कि प्रसन्नता होती है? अच्छा वाह मजा आ गया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, है ना, ऐसा होता है कि नहीं? तो ऐसे ही कहते हैं कि प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम ऐसे के ऐसे रहे हो, एक बार मुदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। इस तरह की बात कहके आचार्य भगवान ने यहां पर अपने को ये संदेश दिया, आत्मा का और राग से भेद ज्ञान का बहुत परम पावन संदेश आचार्य भगवान ने अपने को दिया। इस संदेश को ग्रहण करके अपने जीवन में भेद ज्ञान करके अपन लोग आत्मा की उपलब्धि करें, आत्मा की उपलब्धि से संबर होगा, संबर से निर्जरा होगी, बंध का अभाव होगा, बंध का अभाव होकर के मोक्ष होगा, जैसा मुक्त स्वरूप शुद्धात्मा है वैसा परिणति में प्रकट होगा। हम सभी के जीवन में ऐसा दिन आवे, इसी पवित्र भावना से अपन ये बात यहाँ की अभी पूरी करते हैं।